विराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी ज्ञाति सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
क्षमासागर जी महाराज की भव्य सागर जी महाराज की।
हम सभी लोग पिछले दिनों से एक निश्चित दिशा में यात्रा कर रहे हैं और हमारी अपनी यात्रा का सुख रोज रोज हमें तो ऐसा लगता है कि बढ़ता चला जा रहा है। और सचमुच यदि हमारी यात्रा सच्ची श्रद्धा से और आत्मज्ञान पूर्वक सही दिशा में की जाएगी तो वो यात्रा हमें रोज मंजिल के निकट पहुंचने की आशा से आनंद ही दे। वे लोग जो गलत दिशा में चलते हैं और जिन्हें अपनी मंजिल पाने का कोई भरोसा नहीं होता, वे जरूर चलते चलते थक सकते हैं, उदास होकर के बैठ सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो यात्रा शुरू की है और पिछले दिनों से हम रोज उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है। होता नहीं है ऐसा, होता तो ऐसा है कि बस और दो दिन रह गए, बस और चार दिन रह गए, अब जैसे तैसे कैसे भी निकल गए इस बार के भी व्रत। मेरे ख्याल से ऐसा भाव एकाध दो लोगों के भीतर आया हो तो एक्सेप्शन में भी पॉसिबल संभव है कि किसी के बाद कर्म की तीव्रता ही हो और उसे वो चीज ना रुचे और नहीं रुचने की वजह से उसे वो बोझ मालूम पड़ने लगे। पर हम लोगों ने पिछले दिनों जिस उत्साह और उमंग के साथ अपनी इस यात्रा को गति दी है और हम निरंतर आनंद ही पा रहे हैं। भैया, क्षमा का आनंद मृदुता से बढ़ता है और मृदुता का आनंद सरलता से बढ़ता है और सरलता का आनंद हमारी अपनी पवित्रता से बढ़ता है। और पवित्रता जब हमें सच्चाई मालूम पड़ती है तो पवित्रता का आनंद बढ़ जाता है। और सच्चाई मालूम होने के बाद अगर जीवन में संयम आ जाए तब वो सच्चाई हमें बहुत आनंद देती है कि हाँ, सचमुच मेरे जीवन में आज आनंद आ गया। मैंने जो सच जाना था वो अपने संयम के माध्यम से, अपने आत्मानुशासन के माध्यम से उसका हमने आनंद ले लिया। और संयम का आनंद तो तपस्या से मिलता है और आज उस तपस्या से जैसे कि कोई वृक्ष में लगने वाला हरा सा फल जो कि कच्चा था, कड़ा भी था और जिसमें खट्टापन भी था और जो वो पक जाता है, तपस्या की आग में तप जाता है, तब कैसा हो जाता है? नरम भी हो जाता है, उसका हरापन पीलेपन में, शुभ्रता में बदल जाता है, उसके भीतर का खट्टापन मीठेपन में बदल जाता है। हमने अगर वास्तव में तपस्या करी है तो हमारे जीवन में भी उज्ज्वलता आए बिना नहीं रही होगी, कोमलता आए बिना नहीं रही होगी, मीठापन आए बिना नहीं रहा होगा। ये तपस्या जब इतनी सारी चीजें उस तपस्या से हमारे जीवन में आ जाएंगी तो हमारे जीवन में त्याग त्याग का आनंद अपने आप आना शुरू होगा। आज वही दिन आ गया हमारे सामने, हमने तपस्या के बाद त्याग रखा है। होना तो यह चाहिए था कि पहले त्याग हो फिर बाद में तपस्या हो। तो भैया त्याग पूर्वक ही तपस्या होती है, लेकिन तपस्या के बाद फिर जो चीज हमने पाई है उसे सबको बांट देना। जो हमने जीवन का आनंद उस तपस्या से पाया है उसे बांटने के लिए आज का दिन है। इसलिए शायद बाद में त्याग रखा हुआ है कि दान चार प्रकार, चार संग तुको दीजिए, धन बिजरी उन्हार, नरभव लाहो लीजिए। अगर हमने अपने जीवन में तपस्या करके इस जीवन की कोई वास्तविकता जानी है, इस जीवन की दुर्लभता जानी है, तो इस जीवन का लाभ इसमें है, मनुष्य जीवन की सार्थकता इसमें है कि जो पाया वो सबको दे दिया। मैं यहां क्या लेके आया था, मैं यहां से क्या लेके जाऊंगा, यहां का यहीं पर जो मैंने प्राप्त किया है वो सब मुझे छोड़ करके चले जाना है। तो इससे पहले कि वो अपने आप मुझसे छूटे, मैं क्यों ही ना उसे दूसरे के लिए दे दूं, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, परस्पर एक दूसरे के उपकार के लिए, प्रीति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी दिया जाता है वो सब त्याग कहलाता है। त्यागो दानम सम विभागा, त्याग कहो, दान कहो, सम विभाग कहो, अपनी आवश्यकता के योग बचा करके बाकी सब दे देना। ये सम विभाग है, यही दान है, यही त्याग। और साधु और श्रावक दोनों इस दान के बिना, इस त्याग के बिना अधूरे हैं, तपस्या भी अधूरी है। बताइए साधु और श्रावक दोनों की तपस्या का फल क्या है कि वो जो पाया है उसे हम दूसरे के लिए दे दें। साधु क्या दे सकते हैं? साधु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का दान देते हैं। श्रावक क्या देता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के साधन देता है, आहार देता है, औषधि देता है, दूसरे के लिए साल्टर शरण देता है, आवास या कि अभय देता है, निश्चिंतता देता है, और ज्ञान के लिए या कि संयम के पालन के लिए पीछी कमंडलू और शास्त्र इत्यादि देता है। ये सब जो है उस मोक्ष मार्ग में, जिस मोक्ष मार्ग का दान मुनि जन करते हैं, उस मोक्ष मार्ग के ये साधन हैं। इन साधनों को जुटाने में श्रावक आगे आता है। इस तरह दोनों मानो की एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और उन दोनों के द्वारा ये मोक्ष का मार्ग चलता है जो कि त्याग का मार्ग है। देखा जाए तो धर्म त्याग का ही मार्ग है। किस चीज के त्याग का? अधर्म के त्याग का, और कुछ भी नहीं। जितना जितना अधर्म का त्याग करते जाते जाते हैं, उतना उतना धर्म, हमारा अपना स्वभाव है वो हमारे भीतर प्रकट होता जाता है। हमारी अपनी वास्तविक जो संपत्ति है वो हमें प्राप्त होती जाती। क्या करें, हम अपने खोटे परिणामों से, हम अपने विकारी भावों से अपनी उस वास्तविक पूंजी को भूले हुए हैं, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते, उसे ही अपना मान करके और धरे हुए हैं, और अधिक जोड़ते चले जाते हैं। जो अपना नहीं है उसे जोड़ते चले जाना ही तो अधर्म है, और जो अपना नहीं है उसे छोड़ते चले जाना, और जो जब अपना है वो तो अपना है ही, उसको प्राप्त करने कहीं जाना नहीं है। जो पराया है उसे हम छोड़ देते हैं, तो अपना तो हमारे पास अपने आप ही है। जब बुद्ध से पूछा गया था कि इतनी त्याग तपस्या और साधना आप करते हो, आपने क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि क्या पाना था, जो पाना था वो तो मेरे पास है। तो और आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि जब आपके पास पहले से था तो फिर इस त्याग तपस्या की क्या आवश्यकता। तो बोले त्याग तपस्या मैंने कुछ पाने के लिए नहीं की, वो जो मैं भूल गया था, वो जो राग द्वेष की मलिनता से मेरा अपना स्वभाव ढक गया था, उस राग द्वेष और अहंकार को हटाने के लिए मैंने तपस्या की है। मैंने कुछ पाने के लिए नहीं की, वो जो पाना है वो तो मेरे पास है ही। जैसे कि मैंने पहले भी शायद कभी कहा था कि सबके भीतर सोता है एक झरना, इस प्रतीक्षा में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। हम सबके भीतर ऐसा ही धवलता का उज्ज्वलता का झरना है, लेकिन अपनी ही मलिनता की चट्टानों के नीचे वो मानव परतों के नीचे दबा हुआ है। हम हटाएं उसको, हम करें उस सब का त्याग जो हमारा नहीं है, कम से कम उसे अपना तो ना समझें जो हमारा अपना नहीं है। हम जो हमारा अपना स्वभाव है, ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है, उसे ही हम समझा अपना समझें, और बाकी शेष सब छोड़ने योग्य है ऐसा माने, छोड़ने योग्य है। जैसे कि जीर्ण तृण सम त्यागे, जैसे वज्रनाभि मुनि महाराज ने, जो कि आदिनाथ भगवान के पूर्व जीवन में चक्रवर्ती थे, उन्होंने जैसे कि छोड़ा था जीर्ण तृण के समान, जैसे कि सांप कैचुली छोड़ देता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता उस कैचुली से, ऐसा मान करके दूसरे के लिए लाभ हो तो हो, मेरे अपने लिए कोई अब उस चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसी निर्लोभता पूर्वक जो दिया जाता है उससे हमारी अपनी वास्तविक पूंजी प्राप्त होती है। असल में दो चीजें हैं, अगर हमें अपनी वास्तविक पूंजी मालूम पड़ जाए तो बाहर की पूंजी फिर जोड़ने का भाव न रहेगा, या कि दूसरी बात, बाहर का जोड़ा हुआ साथ नहीं जाता, ये बात अनुभव में आ जाए। ज्ञान में तो सबके है, क्योंकि सबने दूसरे को मरते देखा है, और साथ में सोनो चांदी भी पैरा के जलाओ तो भी सोनो चांदी डिगलिया बन के आगी में इतना ही डलो रह जा, संग नहीं जा, पूरो घर भी उसके साथ में जला दो कि जो ले जाइयो अपनो तुमने बनाओ तो नहीं ले जा पाता। ये सबको बोध है लेकिन अनुभव नहीं है, भीतर से ये बात नहीं आती, सुनी सुनी है, अपने अनुभव की नहीं है, अनुभव किया भी है तो उसे भूल गए हैं, अपने अनुभव से हमने लाभ नहीं लिया, इसलिए हमारी आसक्ति बहुत अधिक है। बाह्य वस्तुओं में आसक्ति कम होने का नाम ही त्याग है। बाह्य वस्तु को बाह्य समझने से त्याग की प्रक्रिया शुरू होती है, और बाह्य वस्तु मेरी है ऐसा अगर भाव हमारे अंदर बना रहा तो मेरी अपनी जो चीज है वो हमेशा खोई ही रहेगी। मैं आपको वास्तविक पूंजी के बारे में कहता हूं, एक बहुत पुरानी घटना है, शायद लगता है सच्ची घटना होगी। एक बार एक शहर में इतनी अधिक बाढ़ आई कि सबका सब बह गया, जानवर तक बह गए, सामान लोगों के घरों में से संभालते संभालते भी पानी इतना भर गया कि लोग बामुश्किल बच पाए, लेकिन सामान सब बह गया। फिर भी थोड़ा बहुत जहां कहीं जिसको संभालना हो पाया संभाल लिया और सामान बच गया। राजा ने घोषणा करी, किला तो सुरक्षित है, बाकी सबके लिए किले में जगह नहीं है, इसलिए वे अन्यत्र कहीं पर भी और चले जाएं, जिसके पास जो सामान है वो सामान लेकर के जा सकते हैं, और भी जो चाहें तो खजाने से दिया जाएगा, खजाने से भी जितना जितना हो सकता था खाने पीने का सामान वो सब पोटलियां बना ली गई, और लोग अपने अपने सिर पर वो पोटलियां रखे हैं, जो बच गया है और जो मिल गया है वो सब सिर पर रखे हुए हैं, चले जा रहे हैं, दूसरे किसी शहर में जाएंगे, वहां पर अपना घर बनाएंगे, वहां रहेंगे, यहां तो सब उजड़ गया है, और सब देख रहे हैं हमारे अपने ऊपर कितना सामान है ये कोई नहीं देख रहा है, दूसरे का सामान कितना है ये सब देख रहे हैं। हाँ, बड़ा मजा है, हमारी पोटली कितनी बड़ी है ये दिखाई नहीं पड़ रहा, दूसरे की पोटली हमारे से बड़ी है ये दिखाई पड़ रहा है, इस बात की पीड़ा खाए जा रही है कि उसका ज्यादा बच गया है मेरा कमती बचा है। इतना ही नहीं, बहुत भारी है कदम चला नहीं जा रहा, क्योंकि जितना बचा था वो भी इतना भारी है कि गर्दन भी झुकी जा रही है और पैर से चलते भी नहीं बन रहा है, और मन में इस बात की पीड़ा बहुत गहरी है। कोई पूछता है कि क्यों पीड़ित क्यों हो, इतना तो बचा है, अरे तुमने देखा कहाँ है कितना कुछ लुट गया है। देखो तो दूसरे का ज्यादा बच गया है इस बात की पीड़ा, सिर पे जो अभी बचा है उसको रखे हैं उसकी पीड़ा, और वो जो मेरा लुट गया है खो गया है उसकी भी पीड़ा, और बेमन से भारी कदमों से चले जा रहे हैं। एक आदमी भर ऐसा है जो आगे आगे जा रहा है, लेकिन उसके पास ना कोई पोटली है ना और कोई सामान है, पहनने ओढ़ने के थोड़े से कपड़े हैं, लेकिन प्रसन्न है बहुत। लोगों ने सोचा ऐसे आदमी को देख करके तो लोग ऐसा ही सोचते हैं, लगता है सब लुट जाने से थोड़ा पैंच वगैरह ढीला हो गया है। हाँ ऐसा लगता है, देखो तो हम तो इतना रखे हुए हैं, उदास हैं, कितना सब लुट गया है, और इसको देखो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। कोई अगर शांति पूर्वक अल्प वस्तुओं में अपना काम चलाए और प्रसन्नता रखे तो हमें पागल से ज्यादा नजर नहीं आता है, क्योंकि हमें अपना पागलपन दिखाई नहीं पड़ता ना, दूसरे का इस तरह का पागलपन दिखाई पड़ता। हम तो इसी को ठीक मानते हैं, उसी को नॉर्मल मानते हैं, जो कि बहुत सारा होने के बाद भी अपना दुखड़ा रोता रहे कि कछु तो नहीं है हमारे पास, उसी को हम नॉर्मल मानते हैं, और जिसके पास कुछ ना हो फिर भी अपने आप को बहुत रईस और धनवान माने उसको तो अब नॉर्मल मानते हैं, वो तो पागल हो गया और चला जा रहा है। वो लोगों ने सिंपैथी दिखाई उसके प्रति, क्यों कुछ भी नहीं बचा? उसने कहा मेरा कुछ खोया ही नहीं, तो क्या तुम्हारे पास पहले से नहीं था? जो था वो अभी भी मेरे पास है। बड़ा अजीब आदमी लगता, अब तो बूढ़ा ही हो गया पागल, जवाब ऐसे दिया, अरे तुम्हारा तुम इतने बढ़िया से पूछ रहे हैं हम कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास जो है वो तो है ही, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं खोया? नहीं मेरा कुछ भी नहीं खोया, तो चला कहां गया सब? अरे कहीं नहीं गया, मेरे पास है। बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अपना सुख है, मेरे पास अपनी प्रसन्नता है, वो पहले भी थी। सामान तो आता और जाता रहता है, उसके आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, पर मेरा अपना जो सुख है, मेरा अपना जो स्वभाव है, वो तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरे से नहीं छीन सकता कोई, वो मेरा है, जो छीन सकता है वो मेरा कभी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा सोच ही नहीं। और यही बात अगर हमारे दिमाग में आ जाए कि जो मेरी निजी पूंजी है वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है, जो छीन सकती है वो मेरी निजी पूंजी तो नहीं हो सकती, ये तो तय हो जाता है। जिसे मृत्यु आकर के छीन ले, भैया पूरी जिंदगी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट सबसे बचा करके भी रख लीजिएगा, चार ठीकरे जोड़ करके सोने के, लेकिन मृत्यु एक झटके में सारे कुछ छीन करके और ले करके चली जाती है, और वही ले पाती है जो कि मेरा नहीं है। लेकिन मृत्यु भी मेरे ज्ञान दर्शन और चरित्र को नहीं छीन सकती है, वो मेरा अपना। इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान तो, सबसे श्रेष्ठ पूंजी तो वही है, और उसी श्रेष्ठ पूंजी को अगर हमने प्राप्त कर लिया है तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं, और हमारे पास फिर भी एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। श्रद्धा दूसरे को दो, अपनी कम नहीं होती, दूसरे की और बढ़ जाती है। ज्ञान कितना भी दो अपना घटता नहीं है, दूसरे को और अधिक बढ़ जाता है। आचरण की निर्मलता दूसरे को कितनी भी दो अपनी निर्मलता और बढ़ती है, दूसरे की भी बढ़ती चली जाती। तीन ही चीजें ये हैं, ज्ञान दर्शन और चारित्र, जो कि दिया जा सकता है और प्राप्त कर लेने पर कभी छिनता नहीं है। वास्तविक पूंजी अगर हम पहचान लें आज के दिन, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने जोड़ के अपनी मान के रख रखा है, उनके प्रति आसक्ति छूटने में देर नहीं लगेगी। वरना जब तक हमारे भीतर इन चीजों के प्रति आसक्ति है, हम इन्हीं को सब कुछ मानते हैं, तब तक क्या होता है, थोड़ा बहुत दे करके संतोष धारण कर लेते, दे तो दिया हमने, तब दे सारा कुछ है ही नहीं मेरा, तो त्याग का अहंकार क्यों? ये ध्यान रखने की चीज है, त्याग संक्लेश पूर्वक ना किया जाए, त्याग अहंकार पूर्वक न किया जाए, त्याग तो साम्य भाव रख करके मेरा है ही नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि ये बेकार मेरे पास रखा था, इसकी चिंता करनी पड़ती थी, चला गया, दूसरे ने लेकर के मेरा बोझा हल्का कर दिया, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि चलो आपने हमारी ये झंझट कमती कर दी। ये बनारसी दास जैसे पंडित हुए हैं, जिनके घर में चोर चोरी करने आया, पोटली बांध ली उसने, लेकिन इतनी भारी हो गई कि उठाई नहीं उठती है अकेले से, सो धीरे से देख रहे थे, सो जाकर के अंधेरे में और उठवा दी। चोर के समझ में नहीं आया कि कौन पोटली उठवा गया, उसने सोचा दूसरा कोई चोर होगा, रास्ते में मिल जाएगा तो आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन कोई रास्ते में नहीं मिला। घर पहुंचा, पोटली खोल के सामान देखा तो माँ ने कहा कि कहां से चुराया तेने, ये तो पंडित के घर का सामान लगता। कहने लगा उन्हीं के यहां से, कहते दियाओ पचेगा नहीं, दिया उसका पंडित का है वो नहीं पचेगा, वो तो चोखा मामला है। तो ये वापिस देने जाता है पोटली, पंडित जी बाहर आ जाते हैं, कहते पंडित जी ये रख लो आपकी। कहते भैया इतनी कृपा करी हमारे ऊपर और अब तुम जो है मेरे ऊपर ऐसा क्यों करने आए हो। कहते हमने कृपा करी। बोले बहुत कृपा करी, पहले ही मैंने परिग्रह का परिमाण बना लिया था, वो भी मुझे ज्यादा मालूम पड़ रहा था, तुमने सूढ़ी हमारे ऊपर कृपा करके और इतना और कम कर दिया। मैंने तो तुम जब ले गए थे सो अपने हाथ से पोटली रखवा दी थी और उसी समय सोच लिया था कि अब ये परिग्रह भी मेरा नहीं है, भैया कृपा करके तुम ही समारो, हमारे बस को नहीं है। बहुत कठिन है ऐसी त्याग की वृत्ति आ पाना, बहुत कठिन। लेकिन इसका एक अंश तो आ सकता है, ये 100% है। चलो ऐसा सोच करके नहीं चुप बैठ जाना कि ये तो महापुरुषों के बूते की बात है, ऐसा त्याग तो अकेला उन्हीं को शोभा देता है, ये तो हमारे आदर्श पुरुष हैं, सो इनको प्रणाम करो और आगे बढ़ो, अपन तो अपनों वो ही करते रहो जो उन कर रहे। नहीं भैया, महापुरुष महापुरुष हमें संदेश दे रहे हैं कि 1% भी अगर इसमें से आप कर पाएंगे तो मुझे जो सुख मिला है वो आपको भी मिल सकता है, एक बार करके तो देखिए। हम ऐसी ही त्याग वृत्ति अपने जीवन में क्या नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, पर ये सब जो कुछ हम जोड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे उपयोग के लिए है और आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं है। हम कहां कह रहे हैं कि आप आज जाओ और सब सामान बाहर फेंक आओ, नहीं, लेकिन इतना तो विचार आ जावे कि ये सब मेरे उपयोग के लिए है, जितना आवश्यक है उतना मेरे उपयोग में आएगा, मुझे इसमें आसक्ति करने से क्या मतलब। ये बहुत बड़ी कोई कठिन सी चीज नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ये सामान क्यों रखा आपने? मेरे उपयोग के लिए रखा है। आपके उपयोग में जिस दिन मेरे उपयोग में नहीं आएगा, आपके उपयोग में आएगा, आप ले लीजिए, मुझे इसमें ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। ऐसा अगर हमारे अंदर विचार आ जाए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हैं उतनी देर तो हम अपना सामान अपने ऊपर तो नहीं लादे हैं, तो कम से कम मन में भी ना लादे रहे, इतनी त्याग वृत्ति आ जाए कि मेरे सब परिग्रह का त्याग, 1 घंटे के लिए मेरा कोई परिग्रह नहीं है, इतनी अनाशक्ति तो आसानी से आ सकती। 1 घंटे तो मेरा कोई परिग्रह, अगर इस 1 घंटे में मेरे आयु बंधेगी तो खोटी नहीं बन सकती, क्योंकि परिग्रह का त्याग करके बैठे, और परिग्रह से 5 पाप होते, मेरे 5 पापों का त्याग है 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का 5 पापों का त्याग, ये त्याग छोटा त्याग नहीं है भैया। उस क्षण अगर लेशा के मध्यम परिणाम बने और आयु का कोई अवसर आवे बंध का, तो सिवाय देवायु के कोई आयु नहीं बनेगी। त्याग, 1 क्षण का त्याग भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट देता है, बहुत लाभप्रद होता है। दूसरे के लिए तो होता ही है जब हम उसे दे देते हैं तब, लेकिन त्याग और दान में इतना ही फर्क है कि हमने दूसरे को दिया नहीं है, मात्र छोड़ दिया, जिसको चाहिए वो ले लो। जैसे कि पहले 2 तरह से राजा अपने राज्य को छोड़ते थे, या तो चुपचाप छोड़ करके बिना चिंता के कि कौन इसको लेगा चले जाते थे, या फिर तिलक लगा के चले जाते थे कि बेटे को दिया ना राज और चले जाते। नीति विचार नियोगी सुदखों राज दियो बड़ भागी। ये नीति है चक्रवर्ती इत्यादि बड़े बड़े राजाओं की कि अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज दे करके और स्वयं चले गए, या वो दान की प्रक्रिया है। और जिसमें ये चिंता ही नहीं की कि दूसरा उपयोग में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, छोड़ा हमने चले गए। हम ऐसा त्याग और दान दोनों यहीं बैठे घटित कर सकते हैं, यहीं बैठे। एक घंटे के लिए मेरा सब पर पदार्थों का त्याग, कुछ भी नहीं है मेरा इस क्षण। और फिर जब मैंने इतनी हिम्मत करी है तो अब घंटे भर बाद उठ करके किसी व्यक्ति जिसको आवश्यक है उसको एक रुपया तो देऊंगा ही, उसको एक रोटी तो देऊंगा ही। आज ये मेरा दान हो गया। और अभी एक घंटे बैठे जो मैंने सब चीजें छोड़ दी थी वो मेरा त्याग हो गया। कोई कठिन बात है क्या मुझे बताओ? अच्छा, दान और त्याग दोनों चीजें कठिन है क्या? आप खुद बताओ। इतनी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन हमने इन दोनों चीजों को इतना कठिन मान लिया है कि अरे हमसे तो त्याग हो गई नहीं। अरे भाई, थोड़ा सा साहस करके, थोड़ा सा ज्ञान अपने भीतर आत्मज्ञान जागृत करके विचार तो करें कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कदम कदम पर कर सकते। एक एक क्षण हमारा अगर हम कीमती माने तो इस तरह हम त्याग के द्वारा उसको कीमती बना सकते हैं। दुकान पर बैठे हैं, कोई भी अभी सामान खरीदने नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसी समय जो है और सब चीजों का त्याग करके उतनी देर के लिए जब तक मैं 9 बार नमोकार पढ़ूं तब तक मेरा सब पदार्थों का त्याग, दुकान भी मेरी नहीं है। जब तक 9 बार नमोकार, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट 30 सेकंड लगेंगे ज्यादा अगर जल्दी से 9 बार करोगे तो। 9 बार नमोकार मंत्र जब तक पढ़ता हूं जब तक कोई भी नहीं है अभी और मेरा कुछ भी नहीं है, दुकान भी मेरी। और अगर उस 9 बार नमोकार पढ़ते समय आयु बन जाए तो देव आयु बनेगी, तय है, तय। कहीं कोई इसमें वो नहीं है, संदेह की बात नहीं है। ऐसे अवसर जीवन में ये त्याग धर्म देता है। जब मैं खाने के थाली पर से उठा, अब 1 घंटे तो खाना ही नहीं है, मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये हो गया त्याग धर्म। और इतने ही नहीं, अब जब मुझे तो खाने नहीं और इतना सारा बच गया है, ये 1 रोटी ले तो फलाने को दे दो, ये हो गया दान। ले मेरा 1 घंटे का त्याग और ये जो सामान बच गया है खाने पीने से, इसमें से थोड़ा सा दूसरे को दे दिया, त्याग भी हो गया और दान भी हो। बताइए, मेरे ख्याल से इससे आसान तो नहीं हो सकता। त्याग भोग पूर्वक ही किया जाता है। त्यक्तेन भुंजीता, वेद का वाक्य। अब बीच में बोलो तो हमारे जो न बोल पे हम फिर पूरो आपको हम सुन ले हैं, मनो तनक रुक जाओ, कछु त्याग करने का। हाँ तो ठीक, अब मन में सोच लाओ तो पक्को कर लो और 9 बार नमोकार कर लो हैं, फिर हम सुन ले। तो त्यक्तेन भुंजीता, हमेशा त्याग जो है वो भोग पूर्वक ही होता है। श्रावक के जीवन में उसके बिना होते ही नहीं। हम जब थोड़ा सा अपने जीवन के लिए रख रखेंगे तभी तो थोड़ा बहुत दे पाएंगे, अब पूरा का पूरा दे दें तो फिर साधु हो गए। लेकिन श्रावक के लिए कहा कि त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक ही भोग करना, बस इतना भर ध्यान रखना। भोग उपभोग की सामग्री तो रखो, रखना पड़ेगी, श्रावक के लिए तो आवश्यक है। वो श्रावक को यश और वैभव कमाना चाहिए। यशस्तिलक चंपू में सोमदेव सूरी कह रहे, श्रावक को अगर कमाना है तो 2 चीज कमाना चाहिए, यश और वैभव। बताइए आप ऐसी सलाह दे रहे हैं, खोटी सलाह मालूम पड़ती है? नहीं, कहते हैं यश के माध्यम से वो अपने धर्म का ही प्रचार करेगा। हाँ, उसका यश क्यों पहुंच फैला है? उसके अपने धर्म से। और उसका वैभव क्यों बढ़ा है? उसके अपने त्याग से। जो यश और वैभव त्याग पूर्वक बढ़ता है, वास्तविक यश और वैभव वो है। इसलिए उसको अर्जित करने के लिए कहा कि त्याग पूर्वक यश और वैभव अर्जित करना ये श्रावक का कर्तव्य है। और यश और वैभव छोड़ देना, उसका भी त्याग कर देना, तब फिर साधु तो आ गई जीवन में। देखिए, इतना ही अंतर है। तो त्याग पूर्वक ही मैं भोग करूंगा, मतलब कितना भोगना, कब तक भोगना, कैसे भोगना और क्यों भोगना, ये चार चीजें ध्यान में रखें तो त्याग आसानी से घटित हो जाए। भोगना या ग्रहण करना, ग्रहण और त्याग ले लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ग्रहण कितना करना, तो बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाही, सीधा सीधा। कितना ग्रहण करना, उतना ही बीज राख फल भोग। हाँ, जिससे कि आगे के लिए पुण्य संचित हो सके उतना ही ग्रहण करना भैया, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना ग्रहण करेंगे उतना पाप होता है, इसलिए उतने ही ग्रहण करना जिससे कि मेरे इतना पाप न लग जावे कि पुण्य बिल्कुल भी पल्ले में ना रहे, तो आगे का जीवन कैसे चलेगा। जैसे कि किसान उतना ही भोगता है, अपने बीज बचा लेता आगे के लिए, सबरो खा ले रहे तो क्या हुई है, फिर वो किसान ही ने कहलाएगा। बीज में हाथ नहीं लगाता किसान, चाहे मर जाएगा दूसरे से कर्जा ले लेगा। हाँ, बीज रखोगे तो एक बोरा बीज बचे हैं, नहीं खा लो साल भर चल जाए एक बोरा, हाँ भूखे रह जाएंगे। इस तरह से भोगे तो कितना भोगे, आगे का इंतजाम है कि नहीं है, तब उतना ही भोगेंगे। और कहते कि किस तरह भोगे, जिससे कि दूसरे का हक न छीने, ऐसे भोगे, ऐसा ग्रहण करें जिससे कि दूसरे का हक न छिन जाए। हमारे घर में हमको आपको एक घटना सुना दें क्या, है तो बहुत सांसारिक लेकिन अब वो याद आ गई। आप कहोगे कि महाराज जी अपने जीवन के बारे में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसा तो नहीं कहोगे, और कहोगे भी तो निंदा ही करोगे, तो आप एक पाप लगेगा, जाओ अब फंसवा दिया हमने आपको आपके उसी में। तो क्या हुआ, वो सबके घर में होता है, ऐसा ऐसा नहीं है, हम तो आप उदाहरण देके सुना रहे हैं। इसलिए क्या होता है, ये कोई भी चीज शुरू शुरू में आती है, सब्जी वगैरह तो थोड़ी महंगी आती है, नई नई आती। मटर फल्ली के बारे में विशेष रूप से हमको याद है कि मटर फल्ली आती है जब उसका सीजन आता है, हर समय तो नहीं मिलती मटर फल्ली, और बाकी चीजें तो बिना सीजन के मिल जाती, तो मटर फल्ली जो है वो आती तो अच्छा, और वो शुरू शुरू में आती है तो बड़ी स्वादिष्ट मालूम पड़ती है, अच्छी मालूम पड़ती, नरम रहते हैं वो मटर, एकदम दाने कड़े नहीं होते हैं, तो अच्छी भी लगती। अब घर में लेकर के आए, बहुत महंगी है भैया, महंगी है तो अब एक पाव लेकर के आओ। अब चार लोग पांच लोग घर में खाने वाले हैं, अब क्या करना, खाना तो है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दूसरे का हक ना छिने उतना ही ग्रहण करना है मुझे। अब मां क्या करेगी, मां तो परोसती जाएगी, तुम ले लो और ले लो। हमारा फर्ज क्या है, मां को बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि एक पाव आई है और सबके लिए इतनी इतनी तो होगी, पांचों के लिए जानी है, ऐसा नहीं कि एक ही पूरा खा ले तो चार को क्या बचेगा। बस ये गृहस्थी में बहुत जरूरी है, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, बहुत सांसारिक लगने वाली, लेकिन इसमें भी त्याग है, त्याग। मैंने अपने परिवार जनों के लिए शेष बचा दिया, वो तो जिद कर रहे थे कि आप ही ले लो, नहीं सबको बच, एक एक चम्मच सबको मिलेगी, पांच चम्मच तो सब्जी एक पाव में कितनी सी मटर फल्ली चलेंगी। अगर ऐसा विचार हमारे मन में आ जावे तो गृहस्थी में भी त्याग घटित हो जाता है, नहीं होता घटित। हम अपने परिवारजनों के लिए ही, अभी हम बाहर नहीं जा रहे, अपने परिवारजनों के लिए उनका हक नहीं छीनेंगे, जो चीज आई है वो सबके लिए है, ऐसा विचार करके कितना इस तरह। और कब तक ग्रहण, कब तक, जब तक कि त्याग करूंगा तब तक ही ग्रहण करूंगा, हाँ नहीं तो नहीं करूंगा। देखो एक सामान्य सी बात है, अगर ग्रहण ही ग्रहण कर जाओ और फंक्शन गड़बड़ हो जाए और त्याग ना हो, मल विसर्जन ना हो, तो खाना खाया जाएगा क्या। अब खाओ बंद करो, क्योंकि तो घर में कमी है, अब दवाई में नहीं जाना पड़ेगा कि वो जो भीतर संचित हो गया है गड़बड़, वो जब तक नहीं निकले जब तक ग्रहण नहीं हो सकता।
एक सामान्य सी बात कह रहा हूं, वो ठीक नहीं जान पड़ेगी, लेकिन अगर देखो घर में भी और कचरा इकट्ठा होता जाए इकट्ठा होता जाए तो क्या होगा? कब ग्रहण करते हैं अपन? जबकि जो वेस्ट है उसको हम निकालते चले जाते तब ग्रहण करेंगे। इतना भी अगर ध्यान रहे कि जो अनावश्यक है उससे अलग कर दो तभी तो आवश्यक। घर में अगर अनावश्यक और आवश्यक सारी चीजें पड़ी रहें तो रहने की जगह नहीं बचेगी। बताओ आप, अनावश्यक फेंकते हैं बाहर की नहीं, त्याग करते कि नहीं करते हैं? वैसे तो अपन रोज त्याग करते हैं, और ऐसा त्याग जो बिना बताए, वास्तव में बिना बताए ही त्याग करना चाहिए। वैसे अपन करते हैं रोज, कौन सी चीज का? सबरो घर को कचरा वचरा झाड़ झूर के चुपचाप आंख बचा के बात फेंक है। जी तो नहीं दिखाते किसी को क्या सब जने देखो देखो इतना कचरा फेंक है हम बाहर, नहीं कोई देख ना ले कि इतना कचरा करते हैं ये, कितने गंदे लोग हैं, इतना कचरा कर दिया। जब हम जैसे घर पर कचरा बिना दूसरे को दिखाए चुपचाप फेंक के आ जाते भैया, ऐसे ही जो है जो अनावश्यक मेरे जीवन में मैंने अपनी आसक्ति से जोड़ के रख लिया है, मेरे काम नहीं आ रहा है, उसको उठा करके बाहर फेंकता हूं। उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरे के काम आता है तो दूसरे को दे देता हूं। मेरा त्याग और दान दोनों सर जाता है, और परिणाम तो दोनों में ही निर्मल हुए बिना रहेंगे नहीं। त्याग की भावना आते ही लोभ घट जाता है और परिणाम निर्मल हो जाते। दान की भावना आते ही उसमें लिखा है कि दूसरे की चीजें अपनी बनाने की चेष्टा करना चोरी, और दूसरे को ही अपना बनाने की चेष्टा करना ये दान। दान की परिभाषा तत्वार्थ राजवार्तिक में पढ़ करके आंख खुल गई। दूसरे को अपना बनाने के लिए, दूसरे से प्रीति बढ़ाने के लिए जो दिया जाए वो सब दान। बताइए, और दूसरे का अपना ले लें अगर चुरा लें तो वो चोरी कहलाती। इतना ही सा फर्क है, दूसरे की चीज अपनी बनाने के लिए कहना ये चोरी, और दूसरे को ही अपना बना लिया तो उसका सब अपना ही हो गया, सब हमारे अपने हो गए, सबके प्रति आत्मीयता हो गई, सबके प्रति प्रेम हो गया, ये तो हो गया दान। और दूसरे की चीजों से तो प्रेम है कि भी हमारी हो जाती तो जो सब चोरी है, जो सब पाप। इतना सही बड़ा बारीक सा फर्क है चोरी और दान में, परिणामों का खेल है। तो तीसरी बात अपन के समझ में आई कि भैया पहले तो कितना, और दूसरी चीज दूसरे किस प्रकार से कि दूसरे का शोषण ना हो, और ग्रहण भी कैसे करें। तो कहते सपर कल्याण की भावना से ग्रहण कर, उतना ही ग्रहण करूंगा जिससे मेरा कल्याण हो, वो सब मैं ग्रहण नहीं करूंगा जिससे मेरा अकल्याण होता है। ये बहुत कठिन है, हालांकि अपन तो बहुत सी चीजें ऐसी ग्रहण कर चुके हैं जिनसे अपना कोई कल्याण नहीं होता, पर फिर भी कल्याण से मतलब दो है, एक तो अपना वर्तमान जीवन अच्छे से चले वो कल्याण है, और एक अपना परमार्थ सदे वो कल्याण है। दोनों विचार करना चाहिए, परमार्थ सदे ऐसा ही ग्रहण करो, और जिससे अपना संसार चले वैसा भी ग्रहण करना है, लेकिन जिससे हमारा अहित होता हो, दूसरे का अहित होता हो, कम से कम वो तो ग्रहण ना करें। अगर हम इस तरह ग्रहण, हमने आपको त्याग नहीं सिखाया, हम तो कह रहे हैं ग्रहण ही सीख लो, ग्रहण करना ही सीख लो। अगर ठीक ठीक हम ग्रहण करना सीख लें तो उसी में से जो है त्याग घटित हो जाता है। और एक छोटी सी घटना आपसे कहूं कि भैया है तो बहुत सारी बातें, लेकिन अब 9:45 बज गए, ज्यादा विस्तारे से कोई फायदा नहीं है कि नहीं, आकुलता हो जाएगी उसमें भी, त्याग की चर्चा करने में भी आकुलता होने लगे तो का काम को त्याग फिर। इसलिए एक छोटी सी घटना कि हम तभी कोई चीज पाते हैं जब हम देते हैं। सीधा सा सिद्धांत है संसार का है कि गिव एंड टेक, दें और पाए, लेकिन वो बहुत सांसारिक है। हम उसे पारमार्थिक बना सकते हैं कि जब जब हम दूसरे के लिए कुछ अपने जीवन में से डोनेट करते हैं, देते हैं, उसके उपकार के लिए देते हैं, तब तक हम और बहुत पा लेते हैं। कुछ भी ना पाए तो एक आत्म संतोष, एक इनर फुलफिलमेंट तो हमारे भीतर आता ही आता है। वो तो तुरंत लगे हाथ मिल जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक अम्मा को बेटा नहीं था, बहुत उम्र हो गई थी, 35-40 साल की हो गई वो अम्मा, और अब वो मां क्या करे, उसके कोई बेटा नहीं है, इसका दुख उसको हमेशा होता था। एक साधु जी के पास गए, बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो भगवान से कि एक बेटा तो हो जाए। अच्छा मां तुम्हें बहुत जरूरी है बेटा, हाँ बुढ़ापे में सहारा हो जाएगा। अच्छा मां तुम्हारी तरफ से भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, अभी तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, मैं पूजा कर रहा हूं, उस पूजा में जरूर तुम्हारे तरफ से भगवान को कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं तो आशीर्वाद दूंगा ही। बड़ी सांसारिक सी चीज है, सबके मन में ये बात आती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। सो भैया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारा जो सिर्फ ग्रहण का भाव है और उसमें त्याग बिल्कुल नहीं है, वो हमारे ग्रहण में बाधक बनता है। अगर हमारा उसके साथ त्याग का भी भाव जुड़ा हो तो वो ग्रहण आसानी से प्राप्त हो जाता जो हम चाहते हैं, और फिर वो हमारे जीवन को उपकारी भी होता है। क्या किया उस साधु ने, मां तुम ऐसा करो, जब तक मैं पूजा करूं घंटे भर लग जाएगा, बाहर कहां खाली बैठी रहोगी, भूख भी लगाएगी, ये लो चने और खाना। बाबा जी वगैरह होशियार बहुत होते हैं, भी ऐसे ही परीक्षा कर लेते हैं, और उन्होंने वो चने उस बुढ़ी उसको मां को दे दिए। अब बाबा जी प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, देख भी रहे हैं कि क्या करती है ये मां, और उसने सोचा कि ठीक है अब घंटे भर बैठना है, थोड़ी देर तो बैठी रही, फिर उसने कहा अब चने खाएं, अपन थोड़े चने ही खा लें, भूख तो लगी है। तो चने जैसे ही निकाल करके खाने को हुई और उसके मन में विचार आया कि अरे ये इतने बच्चे खेल रहे हैं, अब भी अगर मैं इनके सामने खाऊं तो ये सब दौड़ के आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो एक कोने में जाके मुंह उस तरफ करके और खाने लगी और सब खा लिए। बाबा जी चुपचाप देख रहे थे, उनको यही देखना था। और जब घंटे भर बाद पूजा के बाद निकले तो मां ने कहा कि आशीर्वाद दो बाबा। बोले आशीर्वाद तो दूं, प्रार्थना भी करी है लेकिन फलित नहीं हो पाएगी। क्यों, आपकी प्रार्थना फलित नहीं होगी, आपका आशीर्वाद नहीं फलेगा? हाँ नहीं फलेगा, क्योंकि तू अपने लिए तो बेटा चाहती है पर दूसरे के बेटे को बेटा नहीं मानती है, इसलिए तुझे भी बेटा अब नहीं मिल सकता। सारे संसार के बेटे जिसके अपने हो जाएं उसका एक बेटा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और सारे संसार में कोई मेरा बेटा नहीं है तो फिर तुम्हारे भी कोई बेटा नहीं है, वास्तव में ही नहीं है। तुम खुद ही कह रहे हो कि कोई संसार का बेटा मेरा नहीं है इसलिए कोई नहीं होगा। बहुत मोटी सी बात है ये कि अगर हम इस तरह त्याग पूर्वक ग्रहण करेंगे, जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरे के लिए भी चाहें, अगर ये हमारे मन में भाव है तो हमारे जीवन में त्याग धर्म घटित होगा और हमारा जीवन भी उज्ज्वल होगा। इसी भावना के साथ कि भैया हम जो यहाँ संसार में ग्रहण करते हैं उसका हम त्याग भी करें। बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज। अच्छी बात, बहुत अच्छी, ठीक ठीक ठीक। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला।
शिव के निष्कंटक पद में निष्कंटक होता हो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते जब शैले नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंदर जाला दीवानी मानो लड़कियों को लड़ियां भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े दिल जावे अंतर की करियां पथ पंथी गुरुवर प्रणाम मिथ्या तम नाश को ज्ञान के प्रकाश
वर्ग त्यागे प्रमाद जीवन मूल्यों को जाने जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव कुछ उसकी झलक दिखाने को बापू कहते ऋषि परंपरा को फिर से अपनाने को बहुत हो चुकी लौकिक शिक्षा दीक्षा की महिमा जाने संत चरण में बैठ भाव से निज स्वरूप को पहचाने लग जाए गुरु कृपा प्राप्त कर जीवन सफल बनाने तरुण वर्ग त्यागे प्रमाद जीवन मूल्यों को जाने जय 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 गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव आत्मज्ञान का प्याला पीकर ब्रह्मचर्य की मस्ती में कर्मयोग में दृढ़ हो सारे निजानंद की हस्ती में पर उपकार त्याग में जीवन यह आदर्श तुम्हारा हो शुभ संकल्प सर्वहित चिंतन मंगल में जग सारा हो वेद शास्त्र गीता की वाणी लगे सभी अपनाने तरुण वर्ग त्यागे प्रमाद जीवन मूल्यों को जाने जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव बहने बहे नहीं फैशन में बने नहीं शो पीस ये ब्रह्म भाव में आकर पैदा करती है जगदीश ये मीरा सावित्री मदालसा तुम में है तुम सीता हो स्वयं प्रभा अनुसुया गार्गी मूर्तिमंत तुम गीता हो निज गरिमा पहचान लगे ये सारा देश बनाने तरुण वर्ग त्यागे प्रमाद जीवन मूल्यों को जाने जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय श्री सद्गुरुदेव तुम ही शक्ति देश की भारत की तुम शान हो निज अतीत को याद करो तुम ऋषियों की संतान हो वीर शिवा राणा उधम पर तुमको तो अभिमान हो कैसी कैसी थी विभूतियां इसका पूरा ज्ञान हो। उठो जगा पुरुषार्थ जुट पड़ो देश भाग्य तमकाने, तरुण वर्ग त्यागे प्रमाद जीवन मूल्यों को जाने। जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिधाए, इस योग्य हम